अगस्त 2020 की प्रहरी दुर्ग अध्ययन लेख 31। इस लेख का अध्ययन 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान किया जाएगा। विषय: उस शहर का इंतजार कीजिए जो सच्ची बुनियाद पर खड़ा है। ये लेख इब्रानियों 11 के 10 पर आधारित है, जहां लिखा है, वो एक ऐसे शहर के इंतजार में था जो सच्ची बुनियाद पर खड़ा है, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। गीत 22। स्वर्ग में राज शुरू हुआ, अब धरती पर आए है दुआ। लेख की एक झलक। आज हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब यहोवा के वादे पूरे होंगे। इस बीच हो सकता है कि हम सब्र खो दें या हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाए। अब्राहम ने सब्र रखा क्योंकि उसे यकीन था कि यहोवा के वादे जरूर पूरे होंगे। इस लेख से हम जानेंगे कि हम अब्राहम से और हमारे जमाने के भाई बहनों से क्या सीख सकते हैं। पैराग्राफ 1। सवाल: परमेश्वर के सेवक क्या त्याग करते हैं? वो ऐसा क्यों करते हैं? आज परमेश्वर के सेवकों ने अपने जीवन में कई त्याग किए हैं। कुछ भाई बहनों ने अविवाहित रहने का फैसला किया है, तो कुछ शादीशुदा जोड़ों ने थोड़े समय के लिए बच्चे ना करने का फैसला किया है, और जिनका घर परिवार है वो भी सादा जीवन बिताते हैं। यहोवा के लाखों सेवकों ने ऐसे त्याग क्यों किए हैं? इसकी एक खास वजह ये है कि वो यहोवा की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहते हैं। वो अपनी जिंदगी से खुश हैं और उन्हें भरोसा है कि यहोवा उनकी जरूरतें पूरी करेगा। क्या उनका भरोसा कभी टूटेगा? नहीं। वो इसलिए कि यहोवा ने बीते समय में अपने सेवकों की जरूरतें पूरी की थी। इसकी एक मिसाल अब्राहम है। उसे उन सबका पिता कहा गया है जो विश्वास करते हैं। रोमियो 4:11। पैराग्राफ 2। सवाल क: इब्रानियों 11:8-10 और 16 के मुताबिक अब्राहम ने क्यों खुशी खुशी ऊर छोड़ दिया? सवाल ख: इस लेख में हम क्या चर्चा करेंगे? अब्राहम ऊर शहर में आराम की जिंदगी जीता था, लेकिन उसने खुशी खुशी वो शहर छोड़ दिया। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एक ऐसे शहर के इंतजार में था जो सच्ची बुनियाद पर खड़ा है। इब्रानियों 11:8-10 में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने बुलाए जाने पर आज्ञा मानी और उस जगह के लिए निकल पड़ा जो उसे विरासत में मिलने वाली थी। वो नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है, फिर भी वो गया। विश्वास की वजह से वो वादा किए गए देश में ऐसे रहा जैसे एक पराये देश में रह रहा हो, और वो इसहाक और याकूब के साथ तंबुओं में रहा जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे। क्योंकि वो एक ऐसे शहर के इंतजार में था जो सच्ची बुनियाद पर खड़ा है, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आयत 16 में लिखा है, मगर अब वो एक बढ़िया जगह पाने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाता स्वर्ग से है। इसलिए परमेश्वर खुद को उनका परमेश्वर कहने से शर्मिंदा नहीं होता और उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। वो शहर क्या था? उस शहर का इंतजार करते वक्त अब्राहम को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? हम अब्राहम की तरह और हमारे दिनों के भाई बहनों की तरह कैसे बन सकते हैं जो उसके नक्शे कदम पर चले? इस लेख में हम इन सवालों के जवाब देखेंगे। वो शहर क्या है जो सच्ची बुनियाद पर खड़ा है? पैराग्राफ 3। सवाल: वो शहर क्या है जिसका इंतजार अब्राहम कर रहा था? अब्राहम को जिस शहर का इंतजार था वो परमेश्वर का राज है। ये राज यीशु मसीह और 144,000 अभिषिक मसीहों से मिलकर बना है। पौलुस ने इस राज को जीवित परमेश्वर की नगरी स्वर्ग की यरूशलेम कहा। इब्रानियों 12:22। यीशु ने अपने चेलों को इसी राज के लिए प्रार्थना करना सिखाया था। उसने ये दुआ करने के लिए कहा कि परमेश्वर का राज आए और धरती पर उसकी मर्जी पूरी करे, ठीक जैसे स्वर्ग में पूरी हो रही है। पैराग्राफ 4। सवाल। उत्पत्ति 17:1, 2 और 6 के मुताबिक अब्राहम परमेश्वर के राज के बारे में कितना जानता था? क्या अब्राहम को पूरी जानकारी थी कि परमेश्वर का राज किन लोगों से बना होगा? नहीं, ये जानकारी सदियों तक एक पवित्र रहस्य थी। लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि उसके कुछ वंशज राजा बनेंगे, क्योंकि यहोवा ने उसे साफ साफ ये बात बताई थी। उत्पत्ति 17:1 और 2 में लिखा है, जब अब्राहम 99 साल का था, तब यहोवा ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरे सामने सही राह पर चलता रह और अपना चाल चलन निर्दोष बनाए रख। मैंने तेरे साथ जो करार किया था उसे पक्का करूंगा और तेरे वंशजों की गिनती बहुत बहुत बढ़ाऊंगा। आयत 6 में लिखा है, मैं तेरे वंशजों की गिनती इतनी बढ़ाऊंगा कि उनसे कई जातियां बनेंगी और तेरे वंश से राजा पैदा होंगे। अब्राहम को विश्वास था कि यहोवा अपने वादे जरूर पूरे करेगा। उसका विश्वास इतना पक्का था मानो वो मसीहा को देख सका जो परमेश्वर के राज का राजा बनता। इसी वजह से यीशु ने यहूदियों से कहा, तुम्हारा पिता अब्राहम खुशी खुशी आस लगाए था कि वो मेरा दिन देखेगा, और उसने देखा भी और बहुत खुश हुआ। यूहन्ना 8:56। जी हां, अब्राहम जानता था कि उसके कुछ वंशज परमेश्वर के राज में राज करेंगे। यही वजह है कि उसने खुशी खुशी सब्र रखा। उसे यकीन था कि सही वक्त पर परमेश्वर अपना ये वादा जरूर पूरा करेगा। पैराग्राफ 5। सवाल। ये क्यों कहा जा सकता है कि अब्राहम को परमेश्वर के राज का इंतजार था? हम कैसे कह सकते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर के राज का इंतजार था? ऐसा कहने की कई वजह हैं। पहली, वो किसी एक देश में बस नहीं गया, बल्कि जगह जगह तंबुओं में रहा। उसने किसी भी इंसानी राजा का समर्थन नहीं किया। दूसरी, उसने खुद अपनी हुकूमत शुरू नहीं की। इसके बजाय वो यहोवा की आज्ञा मानता रहा और उसने सब्र रखा। सच में अब्राहम का विश्वास लाजवाब था। अब आइए देखें कि अब्राहम ने किन मुश्किलों का सामना किया और उसके उदाहरण से हम क्या सीख सकते हैं। पैराग्राफ 5 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, अब्राहम ने कैसे दिखाया कि उसे यहोवा के वादों पर विश्वास है? अब्राहम ने किन मुश्किलों का सामना किया? पैराग्राफ 6। सवाल। ऊर कैसा शहर था? अब्राहम जो शहर छोड़ आया था वो बहुत महफूज था। चारों तरफ शहरपनाह बनी थी और तीन तरफ एक नहर थी। ऊर के लोग पढ़े लिखे और गणित में माहिर थे। वो बहुत अमीर थे। ऐसा मालूम होता है कि इस शहर में बहुत कारोबार भी होता था, क्योंकि जब इस जगह की खुदाई की गई तो कारोबार से जुड़े कई दस्तावेज मिले। शहर के लोग आराम की जिंदगी जीते थे। वो ईंट के बने पक्के घरों में रहते थे। घरों की दीवारों पर पहले पलस्तर चढ़ाया जाता था, फिर उन पर सफेदी की जाती थी। कुछ घरों में तो 13 या 14 कमरे होते थे और घर के बीचों बीच पत्थरों से बना एक आंगन होता था। पैराग्राफ 7। सवाल। अब्राहम को क्यों भरोसा रखना था कि यहोवा हिफाजत करेगा? अब अब्राहम और सारा कनान के खुले मैदानों में तंबुओं में रह रहे थे। ये जिंदगी ऊर की जिंदगी से कितनी अलग थी। वहां वो आराम से जीते थे और उन्हें कोई डर नहीं था, लेकिन यहां ना तो उनकी हिफाजत के लिए शहरपनाह थी और ना ही नहरें। उल्टा उन्हें दुश्मनों का खतरा था। अब्राम को भरोसा रखना था कि यहोवा उसकी और उसके परिवार की हिफाजत करेगा। पैराग्राफ 8। सवाल, एक बार अब्राहम को किस मुश्किल का सामना करना पड़ा? अब्राहम यहोवा की मर्जी पूरी करता था, फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आईं। एक बार उसी देश में अकाल पड़ा जहां यहोवा ने उसे भेजा था। हालात इतने खराब हो गए कि अपने परिवार के लिए खाना जुटाना भी उसके लिए मुश्किल था। तब वो अपने परिवार को कुछ समय के लिए मिस्र ले गया, लेकिन जब अब्राहम मिस्र पहुंचा तो फिरौन उसकी पत्नी को अपने भवन ले गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त अब्राहम को सारा की कितनी फिक्र हुई होगी। उसने तब जाकर राहत की सांस ली होगी जब फिरौन ने यहोवा के कहने पर सारा को अब्राहम के पास वापस भेज दिया। पैराग्राफ 9। सवाल, अब्राहम को अपने परिवार में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? अब्राहम को अपने परिवार में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसकी प्यारी पत्नी सारा को बच्चा नहीं हो रहा था, इस वजह से वो बहुत दुखी थे। फिर सारा ने अब्राहम को अपनी मिस्री दासी हाजिरा दी ताकि उससे अब्राहम और सारा को बच्चा हो। लेकिन जब हाजिरा को पता चला कि वो गर्भवती है तो वो सारा को नीचा दिखाने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि सारा ने हाजिरा को घर से भगा दिया। पैराग्राफ 10। सवाल, अब्राहम के लिए यहोवा पर भरोसा रखना कब मुश्किल रहा होगा? समझाइए। आखिरकार सारा गर्भवती हुई और उसका एक बेटा हुआ। अब्राहम ने उसका नाम इसहाक रखा। वो अपने दोनों बेटों इश्माइल और इसहाक से बहुत प्यार करता था, लेकिन इश्माइल ने इसहाक के साथ बुरा सलूक किया। इसलिए यहोवा ने अब्राहम से कहा कि वो इश्माइल और हाजिरा को घर से दूर भेज दे। फिर कुछ साल बाद यहोवा ने अब्राहम से इसहाक की बलि चढ़ाने को कहा। इश्माइल और इसहाक के मामले में यहोवा की बात मानना अब्राहम के लिए मुश्किल रहा होगा, लेकिन उसे भरोसा रखना था कि उसके बेटों के बारे में यहोवा ने जो जो वादे किए हैं वो जरूर पूरे होंगे। पैराग्राफ 11। सवाल, अब्राहम ने क्यों सब्र रखा? अब्राहम जानता था कि वक्त आने पर यहोवा के वादे जरूर पूरे होंगे, इसलिए उसने सब्र रखा। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? अब्राहम की उम्र शायद 70 से ज्यादा थी जब उसने अपने परिवार के साथ ऊर शहर छोड़ा। फिर वो करीब 100 साल तक कनान में जगह जगह घूमता रहा और तंबुओं में रहा। जब उसकी मौत हुई तो वो 175 साल का था। यहोवा ने अब्राहम से वादा किया था कि वो उसके वंशजों को कनान देश देगा, लेकिन अब्राहम ने जीते जी इस वादे को पूरा होते नहीं देखा। उसने उस शहर को यानी परमेश्वर के राज को भी स्थापित होते हुए नहीं देखा। फिर भी अब्राहम के बारे में बताया गया है कि वो एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जिया। उत्पत्ति 25:8। अब्राहम ने कई मुश्किलों का सामना किया, फिर भी उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उसने खुशी खुशी सब्र रखा क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यहोवा के वादे एक दिन जरूर पूरे होंगे। वो ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि यहोवा ने उसे अपना दोस्त माना और पूरी जिंदगी उसकी हिफाजत की। पैराग्राफ 12। सवाल क, हम किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? सवाल ख, अब हम किस बात पर ध्यान देंगे? अब्राहम की तरह हमें भी उस शहर का इंतजार है जो सच्ची बुनियाद पर खड़ा है, लेकिन हम इस शहर या राज के कायम होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वो तो 1914 में कायम हो चुका है और स्वर्ग में शासन कर रहा है। हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब ये राज धरती पर भी शासन करेगा। इस दौरान शायद हमें अब्राहम और सारा की तरह कई मुश्किलों का सामना करना पड़े। आज परमेश्वर के कई सेवकों ने उनकी तरह विश्वास रखा है और सब्र से काम लिया है। इनमें से कईयों की जीवन कहानी हम प्रहरी दुर्ग में पढ़ सकते हैं। आइए हम कुछ भाई बहनों के अनुभव पर ध्यान दें और देखें कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। पैराग्राफ 12 से संबंधित तस्वीर के बारे में। एक बुजुर्ग पति पत्नी मुश्किलों के बावजूद यहोवा की सेवा में लगे हुए हैं। वो भविष्य में मिलने वाली आशीषों पर ध्यान लगाए हुए हैं, इसलिए उनका विश्वास मजबूत है। चित्र शीर्षक। अब्राम और सारा की तरह परमेश्वर के सेवक कैसे विश्वास रखते हैं और सब्र से काम लेते हैं। अब्राहम के जैसे भाई बहन। पैराग्राफ 13। सवाल, भाई वॉल्डन के अनुभव से आपने क्या सीखा? हमें यहोवा के लिए खुशी खुशी त्याग करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के राज को अपनी जिंदगी में पहली जगह देना चाहते हैं तो हमें भी अब्राहम की तरह त्याग करना चाहिए। भाई बिल वॉल्डन के उदाहरण पर ध्यान दीजिए। सन 1942 में जब वो अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाले थे तो उसी दौरान वो यहोवा के साक्षियों के साथ बाइबल अध्ययन करने लगे। भाई के एक प्रोफेसर ने उनके लिए एक नौकरी ढूंढ रखी थी, लेकिन उन्होंने नौकरी करने से इनकार कर दिया। भाई ने प्रोफेसर को बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहते हैं। कुछ समय बाद सरकार ने उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन पर $10,000 का जुर्माना लगा और उन्हें 5 साल की जेल हुई, लेकिन उन्हें 3 साल बाद रिहा कर दिया गया। फिर उन्हें गिलियड स्कूल के लिए बुलाया गया और उन्होंने अफ्रीका में मिशनरी सेवा की। भाई ने ईवा नाम की एक बहन से शादी की और दोनों ने मिलकर अफ्रीका में कई साल सेवा की। वहां उन्होंने कई त्याग किए। बाद में भाई बिल अपनी मां की देखभाल करने के लिए अमेरिका लौट आए। भाई बिल ने अपनी जिंदगी के बारे में कहा, मुझे खुशी है कि यहोवा ने मुझे उसकी सेवा करने का मौका दिया। मैं 70 साल से उसकी सेवा कर रहा हूं। ये सब यहोवा की मदद से ही हो पाया है। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने भाई वॉल्डन से क्या सीखा? क्या आप भी अपना जीवन पूरे समय की सेवा में लगाना चाहेंगे? पैराग्राफ 13 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक। भाई बिल वॉल्डन ने खुशी खुशी त्याग किए और उन्हें यहोवा से आशीषें मिली। पैराग्राफ 14 और 15। सवाल, भाई अरिस्टोटेलिस और उनकी पत्नी के अनुभव से आप क्या सीखते हैं? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। अब्राहम के उदाहरण से पता चलता है कि जो लोग अपनी जिंदगी यहोवा की सेवा में लगा देते हैं उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भाई अरिस्टोटेलिस अपोस्टोलिडिस के मामले में ये बात सच साबित हुई। उनका बपतिस्मा 1946 में ग्रीस में हुआ था। सन 1952 में एलेनी नाम की एक बहन से उनकी सगाई हो गई। वो दोनों साथ मिलकर ज्यादा सेवा करना चाहते थे, लेकिन फिर बहन एलेनी बीमार हो गई और पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। ऑपरेशन से उनका ट्यूमर निकाला गया, लेकिन उनकी शादी के कुछ साल बाद ट्यूमर वापस आ गया। डॉक्टरों ने फिर से उनका ऑपरेशन किया। इस बार बहन के शरीर के कुछ हिस्सों को लकवा मार गया और वह ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। उन दिनों सरकार साक्षियों पर बहुत जुल्म कर रही थी। ऐसी मुश्किलों के बावजूद बहन जोश से प्रचार करती रहीं। भाई अरिस्टोटेलिस ने 30 साल तक अपनी पत्नी की देखभाल की। इसके साथ साथ उन्होंने प्राचीन की जिम्मेदारी निभाई, अधिवेशन समितियों में काम किया और एक सम्मेलन भवन के निर्माण में हाथ बटाया। सन 1987 में जब एक बार बहन एलेनी प्रचार कर रही थी तो उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। इस वजह से वो 3 साल तक कोमा में रहीं, फिर उनकी मौत हो गई। भाई अरिस्टोटेलिस ने अपनी जीवन कहानी के आखिर में कहा, सालों से मैं ऐसी कठिन परिस्थितियों, मुश्किल भरी चुनौतियों और हादसों से गुजरा हूं जिनमें धीरज धरने और दृढ़ता से काम लेने की बेहद जरूरत पड़ी थी। इन सारी समस्याओं का सामना करने के लिए यहोवा ने हमेशा मुझे ताकत दी है। इसमें कोई शक नहीं कि यहोवा उन लोगों से बहुत प्यार करता है जो मुश्किलों के बावजूद तन मन से उसकी सेवा करते हैं। पैराग्राफ 14 और 15 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक। भाई अरिस्टोटेलेस और उनकी पत्नी एलनी ने महसूस किया कि यहोवा ने उन्हें ताकत दी। पैराग्राफ 16। सवाल, भाई नॉर ने अपनी पत्नी को क्या सलाह दी? हमें अपना ध्यान भविष्य पर लगाना चाहिए। अब्राहम ने अपना ध्यान उन आशीषों पर लगाया जो भविष्य में यहोवा उसे देगा। इस वजह से वो अपनी मुश्किलों का अच्छी तरह सामना कर पाया। बहन ऑड्री हाइड पर ध्यान दीजिए। उनके पहले पति भाई नेथन एच नॉर को कैंसर हो गया था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। फिर उनके दूसरे पति भाई ग्लेन हाइड को अल्जाइमर्स रोग हो गया। इन हालात में भी बहन निराश नहीं हुई। वो कैसे ये सब सह पाई? बहन ने बताया कि भाई नॉर ने अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले उनसे एक अच्छी बात कही थी। बहन ने कहा, नेथन ने मुझे याद दिलाया, मौत के बाद एक इंसान की आशा पक्की हो जाती है और उसे फिर कभी तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझसे गुजारिश की, हमेशा आगे की तरफ देखती रहना, क्योंकि तुम्हारा इनाम वही है, परमेश्वर के काम में लगी रहना, अपनी जिंदगी को दूसरों का भला करने में लगाना, इससे तुम्हें जीने में खुशी मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो भाई नॉर ने अपनी पत्नी को यह सलाह दी कि वो दूसरों की खातिर भले काम करती रहें और अपनी आशा की वजह से खुशी मनाती रहें। उन्होंने कितनी अच्छी सलाह दी। पैराग्राफ 16 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक। बहन ऑड्री हाइड निराश नहीं हुई क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान भविष्य पर लगाए रखा। पैराग्राफ 17। सवाल क, आज हमें भविष्य पर और भी ज्यादा ध्यान क्यों लगाना चाहिए? सवाल ख, मीका 7:7 के मुताबिक हमें भविष्य में आशीषें पाने के लिए कैसा नजरिया रखना चाहिए? आज हमें भविष्य पर और भी ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। दुनिया की घटनाएं साफ दिखाती हैं कि हम इस व्यवस्था के आखिरी दिनों की आखिरी घड़ी में जी रहे हैं। बहुत जल्द हमारा इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का राज पूरी धरती पर शासन करेगा। तब हमें कई आशीषें मिलेंगी। एक आशीष ये है कि हम उन सभी अजीजों को दोबारा देख पाएंगे जो आज मौत की नींद सो रहे हैं। उस वक्त यहोवा अब्राम को उसके विश्वास और सब्र का इनाम देगा। यहोवा उसे और उसके परिवार को जिंदा करेगा। क्या आप उनका स्वागत करने के लिए वहां होंगे? अगर आप अब्राम की तरह खुशी खुशी परमेश्वर के राज के लिए त्याग करें, मुश्किलों के बावजूद अपना विश्वास बनाए रखें और यहोवा के वक्त का इंतजार करें, तो आप वहां जरूर होंगे। मीका 7:7 में लिखा है, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं यहोवा की राह देखूंगा, अपने उद्धारकर्ता, अपने परमेश्वर के वक्त का इंतजार करूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आप क्या सोचते हैं? अब्राम को किस शहर का इंतजार था? अब्राम ने किन मुश्किलों का सामना किया? हम अब्राम की तरह कैसे बन सकते हैं? गीत 74। आओ गाएं राजगीत। लेख समाप्त।